बुक। लेकिन वो दान के और हराम के पैसे ने उसको ऐसा परेशान किया कि वो पकड़ा भी गया, आया भी, माफी वाफी भी मांगी और बाद में दूंगा, वो जब दे तब दे, लेकिन जिनके पास से आश्रम के नाम से उभरा है उन बेचारे के विश्वास का घात हो जाएगा। भाई उनको भेजो। दिल्ली में एक ठग ऐसे कुछ किताबें लेकर घर घर पहुंच गया, लीजिए पढ़िए किताब, हम लोग समिति में हैं, आयोजन करा रहे हैं, आप पढ़िए। भाई कितने पैसे किताब के? किताब के नहीं, आपको जो डोनेशन देना हो दे दीजिए, आप किताब तो रोज दो रुपया लिखा हुआ है, 3 रुपया क्या करें, और डोनेशन क्या 3 रुपया थोड़े देगा, कोई 50 देता है, कोई 100 देगा, कोई 500 देगा। ऐसा किसी ठग ने उघराना शुरू कर दिया। उस ठग को हमने भी नहीं पकड़ा, समिति वालों ने भी नहीं पकड़ा, लेकिन उस ठग को किसी अनजान व्यक्ति ने पकड़ा और फिर CBI वालों को पकड़ा दिया। वो ठग तोबा कर गया कि कैसा काम हो जाता है, इस अपने हृदय में निष्कामता है तो कोई बेईमानी करता तो बेईमान ऐसे ही पकड़ा जाता है कि आज से फिर बोर्ड लगाने पड़ते कि आश्रम के नाम पर, समिति के नाम पर, अथवा कभी कभी कैसेट में बोलना पड़ता है कि ऐसा कोई ठग न घुस जाए, इसकी भी सावधानी रखना, और ऐसा कोई एडजस्टमेंट वाला भी न घुस जाए उसकी भी सावधानी रखना। जयराम जी की, ये साहब एडजस्टमेंट कर दिया। पंचेड़ में एक ऐसा घुस गया था पंचेड़ समिति में, अभी मैं उसका अभी तक नाम नहीं लिया न लूंगा। तो मेरे हृदय में हुआ कि फलार पंचेड़ आश्रम है तो आश्रम की समिति के आदमियों में खजांची कैसा है उसका कभी कभी तो देखना पड़ता है ध्यान करके। तो मेरा हृदय बोलता था कि आदमी बाहर से तो बड़ा दिखता है, अच्छा दिखता है, लेकिन मेरा हृदय अंदर पुकारता है कुछ, तो पंचेड़ जाऊंगा तो बुला लूंगा, क्या करूँगा, इधर बुलाऊंगा आए ना आए बेचारा बिजी होगा। पंचेड़ गया तो समिति के आदमियों में से वो मुझे क्या खजांची कौन है, मैं क्या मेरे पीछे पीछे आ, मैं घूमने गया पीछे पीछे, मैं क्या अपनी समिति में पैसे, आपकी समिति में कुछ गड़बड़ होते हैं? बोले बापू ऐसा तो नहीं है, यहाँ तो बहुत खबरदारी से काम करते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है। मैं क्या कोई नहीं है, ये तो तुम कहते हो लेकिन मेरा हृदय बोलता है कहीं पैसे गड़बड़ होते हैं दान के। बोले अच्छा बापू ध्यान रखेंगे। बाकी उसने नामदान भी ले रखा था दिखाने के लिए, जयराम जी की, और समिति में खजांची बन गया था। मैं कहा अच्छा तुम जाओ सोचो, अगर ऐसा कोई है तो मेरे को बताना, ये दान का पैसा है, उस कम वक्त को तो पता नहीं चलेगा लेकिन उसकी 7 पीढ़ियां पायमाल हो जाएगी, इसलिए तुम ध्यान रखो, कल मुझे बताना, 24 घंटे की तुमको मुदत देता हूँ। तब भी उसको लाइट नहीं हुई जयराम जी की। फिर आया, फिर मैं वो पंचेड़ आश्रम की कच्ची सड़क से घूमने निकला, पीछे पीछे आया। मैं क्या ऐसा कोई है? बोले नहीं बापू इसमें तो फलाना है फलाना है फलाना है और मैं आपका दास भी। वो बोलता जा रहा है, मैं सुनता चला जा रहा। फिर मैंने मुड़ के उसको कहा, मैं क्या तुम्हारे ध्यान में नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन दान का पैसा जो खाएगा सारा बर्बाद हो जाएगा। वो उसकी नज़र मेरी आंखों पर पड़ी और थोड़ा आवाज में कड़काई थी, वो लंबा पड़ गया। बापू मैं जरूर ध्यान रखूंगा। अच्छा मैं जाऊं? हाँ मैं क्या जाओ। रात भर उसको नींद नहीं आई, दूसरे दिन फुट फुट के रोया और चिट्ठी लिखी कि समिति में जो 10,000 इतने रुपए मेरे लेने निकलते हैं वो आप कृपा करके स्वीकार कर ले समिति, और जो कुछ भी है मैं आपके शरण में हूँ, जो कुछ लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी। मैं कहा अच्छा जाओ। नाम तो उसका मैंने जाहिर नहीं किया लेकिन जितना लिया उससे कितना ही पैसा उसका और ढंग से गया। उसके पहले दूसरा आदमी था उसमें उसने भी कुछ इधर उधर किया तो उसको तो इतना खर्चा हुआ कि मगज कटाना पड़ा और बाँछे माँछे घूम गई, ऐसे चलता है। ऐसे दूसरी जगह भी एक दो है, मैं नाम लेकर किसी को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। ये धर्मादे का पैसा ऐसा खतरनाक है महाराज, तो भा करो आरती कराई फाके यहीं पहना पैसा उठिया पर हेडा होना थे तो हड़ी नास्ती ना। उस धर्माते के पैसे में गड़बड़ होती तभी बुद्धि में गड़बड़ हो जाती। मुफत का खाना सत्यानाश जाना, तो आप की समितियों को ये ध्यान रखना होगा। अब वो पहले समय था कि कम समितियां थी तो कभी कभी किसका देखते, अभी तो देखने का भी टाइम नहीं मिलता, सच्ची बात। और ये एक एक का बैठ के ध्यान लगाएं, ये अब मेरे बस का नहीं, इसीलिए भी ये जो तुम्हारा आयोजन हुआ अच्छा है, ताकि मेरी बात सब तक पहुंच जाएगी। और सावधान रहना, खजांची बनकर हजार दो हजार लाख दो लाख पाँच लाख चुराएगा, लेकिन ये भी मुश्किल है पाँच लाख कोई खजांची समिति का बन के चुरा ले। देर सबे तो बात आ ही जाती महाराज, उसका पोल खुल ही जाता है, और कोई नहीं खोले तो उसका अंतरात्मा तो उसको डंकता कि किसी को पता ना चले, चेहरे पर गड़बड़ हो जाती है। लेकिन तुम्हारे जीवन में पाँच लाख क्या होता है, पच्चीस लाख क्या होता है, तुम तो सत्कर्म करके सत्य स्वरूप ईश्वर के सुख साम्राज्य को पाओ, ऐसा तुम्हारे को मिल रहा है। दूसरी बात भी ये कहनी थी कि जहाँ जहाँ समिति के भाई हैं वहाँ वहाँ जो सफ़ेद पोशाक वाले हैं, गरीबों को आदिवासियों को तो देते हैं, सेवा करते ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जो आदिवासियों से भी आदिवासी हैं, ऐसे लोग भी हैं, वह कपड़े तो अच्छे हैं लेकिन आदिवासियों से भी ज़्यादा उनकी स्थिति दयाजनक। 25 रुपया दिन में कमाएँ कि छः आदमी होते हैं घर में, पांच आदमी होते हैं, बूढ़ी माँ होती है, बाप होता है, छोरे को 25 रुपये मिलते हैं, तो ऐसे लोगों को भी अगर तुम्हारे नज़र में हो तो थोड़ी लिस्ट बनाकर, छोटा मोटा राशन कार्ड या और कुछ बनाकर उनको भी थोड़ी बहुत मदद दे सको तो देना, और तुम दो थोड़ा यहाँ से अहमदाबाद समिति से, अहमदाबाद समिति नहीं तो फिर अपना गुरु समिति से थोड़ा मिलजुल के सेवा कर लेंगे। नारायण हरि नारायण। अहमदाबाद समिति की भी लिमिट है तो फिर थोड़ा वो समिति थोड़ा वो समिति, सत्कर्म होते रहे। लेके तो हमारा बाप भी नहीं गया, रोटी तो उसके बाप को देनी है, फिर संग्रह अधिक अच्छा नहीं, ये मोक्ष पथ में आड़ है। कैसे भला तू भज भग सके सिर पे लदा जो भार है। और समितियों को ये भी एक सेवा का अवसर मिल सकता है कि महीने में एक दिन ऐसा रखे कि जहाँ रहते हैं उस इलाके की अस्पताल है तो मरीजों का दर्शन करने चले जाए, दो दो फल, पांच पांच फल, चार चार फल, और कोई निर्भिकता जैसा जीवन रसायन पुस्तक दे उनको। ये कार्य भी समितियाँ कर सकती है। जो दर्दी हैं, बीमार लोग हैं, उनसे भी महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, तीन महीने में एक बार, पंद्रह दिन में, जैसी आप लोगों की सुविधा। घूमना भी हो गया थोड़ा, और मरीजों को देखकर कहो कि शरीर की ये हालत, अपना वैराग्य भी बढ़ेगा। और कभी कभी अपनी अपनी समिति अपने अपने शमशान के इलाके में जाके बैठोगे, ले भाई आखिरी एड्रेस है, पहले से आगे देखो ये होना है, ये भी एक रख दो आप। हम तो भाई हमारे पिताजी को जब छोड़ने गए थे 10-11 साल की उम्र थी, और पिताजी की भभुक भभुक अर्थी जलती देखी और हमारा सोया हुआ वैराग जगा। फिर उसी शमशान में हम कई बार गए, और लेकिन अगर हम मरेंगे तो हमको तो यहाँ नहीं लाएंगे, गाड़ देंगे इस उम्र में तो जहाँ बच्चों को गाड़ते हैं, 8-10 साल 11 साल के बच्चों को गाड़ देते हैं, वो पास में ही शमशान था अकेली को मिट, फिर वहाँ जाके बैठते थे गड़े हुए बच्चों के शमशान में, और मन को बोलते थे देख ये है, कल भी मर सकते हो और परसों ही ऐसे सो सकते हो, इसलिए चेत जाओ भैया। तो आप भी समिति, पूरी समिति, यही तो समिति के कोई कोई मेंबर शमशान में भी जाए। कलयुग में शमशान को वरदान है कि वहां ज्ञान और वैराग्य मुफ्त में मिलेगा। ज्ञान वैराग्य नहीं है तो भक्ति बिचारी रोती रहती, ज्ञान वैराग्य मूर्छित है तो भक्ति बिचारी रोती रहेगी। के लिए वस्तु मिली है, वस्तुओं का सदुपयोग करने की जिम्मेदारी आई अपने पास, समय का सदुपयोग करने की जिम्मेदारी आई हमारे पास, तो हम उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएं। महात्मा गांधी जेल में थे, जेलर के साथ कोई गंभीर विषय पर बात कर रहे थे, जाड़ों के दिन थे, स्नान के लिए गर्म पानी रखा था, उनसे बातचीत का सिलसिला एकाएक बंद करके वो सिगड़ी में जो कोलसा था वो कोलसा निकाल कर अर्ध जला कोलसा बुझा कर फिर जेलर के साथ बात में बैठे। जेलर समझ गया कि गांधी जी आधा कोलसा बचाने के लिए बात का सिलसिला बंद करके गए। बोला मिस्टर मोहनलाल मैं एक बैग भेज देता हूँ कोलसे की, कोलसे बहुत पड़े जेल में। बोले पड़े हैं तो क्या है, तेरे बाप के थोड़े हैं, है सरकार के, और सरकार तो पब्लिक खून में से ही तो उसकी तिजोरी में आता है, तो मैं उपयोग तो करूं जरूरत पूर्ता, लेकिन बिगाड़ने का मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए मैंने बुझाया, तू क्या दे देगा। तो समिति वालों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बिगाड़ ना हो हमारी समितियों में। बख्शीश लाख की हिसाब पाई का कोड़ी का, सदुपयोग होता हो तो 1 लाख नहीं 10 लाख खर्च करो, 50 लाख खर्च करो, 50 करोड़ खर्च करो, आते जाएंगे, कमी नहीं रहेगी। लेकिन जब चोरी या बिगाड़ होगा तो फिर अपनी सेवा ही बिगड़ी समझो। और भी महाराज आपको क्या क्या बताऊं, ऐसे भी लोग थे 1400 रुपया समिति में से खाली हड़प किया, पूरा का पूरा तेजुमल का खानदान कुटुंब अभी दुखी हो रहा है, वो तो मर गए लेकिन वो 1400 रुपया अभी भी बदला ले रहे। दिशा की बात है, ये कलयुग नहीं कर्जुग है, देर सवेर इस परिणाम तो आता है। तो समिति के भाई बहने ये भी ध्यान रखेंगे, और दो सिद्धांत सामने रखें। एक सिद्धांत, लीलाशाह बापू गठरी लेकर गांव गांव प्रचार करते हैं सेवा का कितना महत्व है, हनुमान जी कितनी सेवा करते, सेवा नहीं मिली तो चुटकी बजाने की सेवा खोज ली, राम काज बिन कहां विश्राम। दूसरी बात की समिति में स्नेह और सच्चाई बनी रहे, कभी गलती किसी की होगी, कभी अध्यक्ष की होगी, कभी उपाध्यक्ष की होगी, कभी खजांची की होगी, कभी मेंबर की होगी, एक दूसरे को ठीक करने के लिए एक दूसरे पर हावी होने की बजाय एक दूसरे के आगे नम्रता से पेश आए तो संघर्ष की जगह पर स्नेह पैदा हो जाएगा, विरोध की जगह पर शक्ति का संचार हो जाएगा। अजी ये ऐसा है, अजी वो ऐसा है, अजी वो ऐसा है। राम तीर्थ कहते थे कि सेवा करते और उन मूर्खों को पता भी नहीं कि सेवा सेवक को कितना बड़ा दिल रखना चाहिए। अजी फलाना ऐसा है, ये आदमी ठीक नहीं, ये गाय ठीक नहीं क्योंकि सवारी के काम नहीं आती, और घोड़ा ठीक नहीं क्योंकि दूध नहीं देता, बेकार है, क्या रखें। और हाथी, अरे हाथी खाता खूब है, चौकी नहीं करता कम वक्त। और कुत्ता, बोले चौकी तो करता है लेकिन सवारी के काम नहीं आता, तो क्या करें उसको। तो तू तो बेकार हो गया, तेरे लिए सब चीज बेकार हो गई मूर्ख। अरे बड़ा काम है तो बड़ा दिल रखना पड़ेगा, जिसमें जो क्षमता जो योग्यता है उसका उपयोग करते करते उसकी योग्यता बढ़े, ऐसा करके गाड़ी चलाना होगा। चीजें लाकर कतार कर दी और बच्चों को बांट दी। दूसरे महीने में लाहौर कॉलेज में पगार हुआ 100 रुपया, बांट दिया। तीसरे महीने में भी ये किया, और घर में बच्चों का हाथ टाइट हो गया, पत्नी ने वही अपना थिगड़ा लगा के पहन रखा है, बेटों को थिगड़ा लगा हुआ है, और प्रोफेसर सुनकर हैरान हो गए कि प्रोफेसर के बेटे हैं कि किसी भिखमंगे के बेटे हैं। जाके राम तीर्थ को डांटा कि आप कैसे हो मिस्टर, एमए पढ़े हो, अपने बच्चों की हालत तो तुम किसके लिए कमाते हो, बच्चों के लिए कमाते हो? राम तीर्थ ने कहा हाँ, तीर्थ राम नाम था, हाँ बच्चों के लिए कमाता हूँ। तो फिर बच्चों को दो ना तुम? बोले हाँ बच्चों को दे रहा हूँ। क्या खाक बच्चों को दे रहे हो? 100 रुपया पगार मिलता है, कापियाँ ले लेते हो, पेन ले लेते हो, पेंसिलें ले लेते हो, चने ले लेते हो, सिंग ले लेते हो, सामग्री ले लेते हो और लंबी कतार कर देते हो भिखमंगों की बच्चों की और उनको देते हो। तो बोले वो भी तो मेरे ही बच्चे हैं, तो तुम्हारे जो घर बैठे हैं दो उनका क्या? बोले उनको भी कतार में लगा दो, उनको भी दे दूंगा, क्या है? हाँ ब्रो, आओ उनको लाइन में। ये क्या कह रहे हो? बोले क्या, ये दो ही बेटे मेरे हैं, जिसका मैं हूँ उसके वो हैं, वो अनंत संभालेगा, जब मैं उसी के उनको संभाल रहा हूँ तो इनके वो नहीं संभालेगा। दूसरे प्रोफेसर जो चतुर थे, कमा कमा के बेटे को दिए, उनके बेटे तो कोई मास्टर बना, कोई क्लर्क बना, तो कोई महाराज छोटा मोटा धंधे वाला बना, कोई कोई बिरला प्रोफेसर बना। लेकिन रामतीर्थ के दोनों बेटे, एक तो चीफ जस्टिस बना और दूसरा चीफ इंजीनियर बना, ले ऐसा मैंने सुना। जितना आप बहुजन हिताय बहुजन सुखाय करते उतना आपके बेटे बेटियों का परिवार का सब अच्छा होने लगता है। उत्तम राजा उत्तम सेवक अपने विषय में अपने लिए नहीं सोचता है, मिली हुई सामग्री मिली हुई योग्यता बहुजन हिताय के लिए सोचता है, तो उसके लिए और उसके परिवार के लिए अनंत अपने आप कर लेता है। शू करूँ, मारी दीकरी माटे तो आटलू राखू, दीकरा माटे तो आटलू करूँ, ऐसा कर करके तो कई मर गए दीकरे दीकरे के लिए, और वही दीकरी और दीकरे बुढ़ापे में थूकते भी नहीं, पूछवाए नहीं आता, छेकणी नहीं लेवा आता काका ने। एक काका नहीं, सब लोग आप काका बनेंगे। जिन ला सूर सठासू से कांधी की नथिया, जिनके लिए सारी जिंदगी नीचो नीचो दिया, वो मोह में स्वार्थ में एक आदमी मर गया। बोले क्या दान पुण्य किया? चित्रगुप्त ने पूछा। बोले मैंने तो सब दान कर दिया, मेरी दो फैक्ट्री थी दोनों बेटे को दे दी, और जो बैंक बैलेंस था उसमें आधा हिस्सा लड़कियों को दे दिया और आधा हिस्सा पोतों के नाम कर दिया, और ज्वेलरी थी वो मिसेस के नाम पे और थोड़ा करके आया, मैं सब दान करके आया। बोले डाल दो इसको नरक में। अरे अपने धातु से अपने पेशाब की बूंद से जो पैदा हुए उनको दे दे के वो तुमने तो तुम्हारा काम का विकार, वही कामना कामना में दिया, जिससे तुम्हारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है और ईश्वर के नाते उनको कितना दिया वो दान में माना जाएगा? ये दान थोड़े है, ये तो मोह है, कपट करके कमाया और मोह करके दे दिया, तो दोनों तरफ से बंधे हो, डाल दो इसको नरक में, धकेले ले जाओ हरान के। नारायण हरि, नारायण हरि। एक आदमी को गाड़ियां थी, 2-3 ट्रांसपोर्ट का करता था। किसी ने कहा कि भाई गाड़ी चाहिए। बोले गाड़ी साहब 8 दिन के लिए हम नहीं दे सकते, बुक है 8 दिन का माल। बोले तो दूसरी कोई ट्रांसपोर्ट बता। बोले हमारे गांव में तो एक ही ट्रांसपोर्ट है हमारी, आप तो जानते हैं दूसरी कहां से। बोले दूसरी किसी की गाड़ी मिल जाए तो। बोले देखो मैं जांच करूंगा, लेकिन आजकल सीजन चल रही, गाड़ी मिलना मुश्किल। क्यों, क्या चाहिए? अरे बोले वो सत्संग होने वाला है और ये उसी लिए मुख। किसका सत्संग? बोले बाबू जी। अरे यार पहले क्यों नहीं कहता, ले अपनी गाय छोकरा, वो माल बाद में, ये गाड़ी दे दो। बोले पिताजी ये 1500 कमाई की। अरे बोले 1500 साले कहाँ रहेंगे, ये तो कमाई ऐसी करेगी तू भी खाएगा तेरा बेटा भी खाएगा फिर भी नहीं कुटेगी, ये पुण्य कमाई हो रही है। गाड़ी भेज सत्संग में, गाड़ी भेज सत्संग में फेरा करेगी, बाबा जी आ रहे हैं, संत का दर्शन करने को लोग जाएंगे, उनकी सामग्री लाएगी करेगी, गाड़ी रख दो, 4 दिन सत्संग चलेगा, 5 दिन गाड़ी रख दो ट्रांसपोर्ट की ऐसी तैसी। ओ मोची, बंबई का सेठ जूता सिलाता है, जूता सिलवा रहा है। मोची पूछता सेठ जी कैसे आए इस गांव में, आप कहाँ के? बोले मैं बंबई का हूँ, बोरेवली के पास में फलानी जगह पे मेरा अपना है सब कुछ। इस गांव में आया हूँ बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए। मोची की आंखों से टप टप आंसू बहते हैं। बोले क्यों भाई? बोले सेठ जी, मैंने भी विचारा था कि मैं भी जाऊंगा कथा सुनने को, लेकिन मैं अभागा नहीं जा सकता हूँ। मैं तो उपवास कर सकता हूँ, मेरी पत्नी उपवास कर सकती है, मेरे बेटे पानी पीकर सो सकते हैं, लेकिन मेरी जो बूढ़ी दादी माँ है और मेरे जो पिताजी हैं, वे भूख नहीं निकाल सकेंगे। अगर मैं कथा में जाता हूँ तो एक दिन मुझे ये फुटपाथ की दुकान बंद रखनी पड़ेगी, इसलिए मैं कथा सुनने नहीं जा सकता हूँ सेठ, मैं अभागा। मोची की आंखों से पानी की बूंदे गिरी। चप्पल सी लिया सेठ की, सेठ ने 10 की नोट मोची के आगे रखी, भाई ले ले। मोची कहता, ये क्या कर रहे हो? बोले 10 रुपये रख ले, छूटा वापस नहीं चाहिए। बोले 10 रुपये तो क्या, मैं आपके 10 पैसे भी नहीं लूंगा। आप संत के दर्शन करने आए, सत्संग सुनने आए, कम से कम इतनी सेवा तो मेरे को दे दो। सेठ बोलता है, तेरे मोची के 50 पैसे रखकर मैं क्या अमीर होऊंगा? मेरे पास तो 40-40 हज़ार रुपया पगार लेने वाले सीए नौकरी करते, पानी भरते मेरे यहाँ। मैं फाइनेंस का भी करता हूँ, मूलजी जेठ मार्केट में मेरी 3 दुकानें हैं भाई, 80-80 लाख की दुकान जैसी दुकान है, अभी तो 1.5 करोड़ भी मिलता है। मेरे पास कितना पैसा, मेरे को भी अभी गिनने में देर लगेगी, और तेरे 50 पैसे मैं क्यों लूँगा? ले रख ले 10 रुपया। मोची बोलता है, सेठ 10 पैसा भी नहीं लूँगा। अब सेठ और मोची का तो युद्ध हो गया। मोची कहता है नहीं लूँगा, और सेठ कहता है कि मैं नहीं लूँगा तेरा मोची का 50 पैसा। आखिर महाराज दोनों का मधुर युद्ध चला, त्यागमय युद्ध चला। मोची ने हाथ जोड़े, पैर पकड़े के, सेठ और तो कुछ नहीं, कम से कम इतनी तो सेवा मुझे करने दो, आप बम्बई छोड़कर संत के दर्शन करने आए। अरे बोले, मैं तो खुली हवा, खुल शुद्ध पानी, शुद्ध दूध, गांव में दूध मिलेगा, और थोड़ा बापूजी फ्री होंगे तो कभी दर्शन और बातचीत का अवसर मिल जाएगा, इसलिए मैं बम्बई से आया हूँ। तू तेरे पास से चप्पल सिलाने थोड़े आया भाई, तो जहाँ ठहरा हूँ गेस्ट हाउस से इधर आने में बीच में पैदल आना पड़ता, चप्पल टूट गई। तू ले ले 10 रुपया, 5 रुपया ले ले, चल 2 रुपया ले ले। बोले सेठ जी, 2 पैसा भी नहीं लूँगा। अरे भाई चप्पल सिया है तेरा अपना, ले ले ना। बोले नहीं सेठ जी, देता है ना भगवान, तो आज खाने भर को है, इधर के लिए तो जिंदगी भर करते, उधर के लिए थोड़ा सा तो मेरे को करने दो सेठ जी। आखिर मोची की जीत हुई और सेठ ने हार मान ली। गुरु गोविंद सिंह के पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया कि लोग दबे जा रहे हैं, अब कुछ सैन्य मैन्य में तो पैसा चाहिए। गुरु जी ने कहा, किसी को भी जो भी कुछ चाहिए, फल फ्रूट प्रसाद नहीं लाओ, रोकड़ रकम ले आओ, सैन्य के लिए चाहिए। किसी ने 100 दिया, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 5000। एक माई चवन्नी ले आई, गोविंद सिंह ने उसकी चवन्नी लेकर आंखों पे रखी, चुम्बन किया, हृदय से लगाया उस चवन्नी को, एक हाथ से दूसरे हाथ, एक हाथ से, और जो दान दक्षिणा रखी, चेलों को बोला संभाल लेना, और चवन्नी को तो आप संभाल। चेलों ने पूछा कि चवन्नी में क्या जादू है गुरुजी, आंखों पे चढ़ा रहे हो, चुम्बन कर रहे हो, क्या बात? बोले ये माई कथा में बैठी थी बुढ़िया, और इसका एक लौता बेटा वो भी अलग हो गया है, अब पति तो चल गए हैं। वो इसके पास हसिया था, हसिया से घास काटती थी और घास बेचती थी, उसी से गुजारा करती थी। लेकिन इसने देखा कि गुरु को कुछ देना है, तो अपना हसिया बेच के पूरी की पूरी प्रॉपर्टी दे रही है। 100% दे रही है प्रॉपर्टी, कल क्या खाएगी उसकी फिक्र नहीं कर रही। तो ये चमनी क्या है, ये तो खजाना है भाई, 100% डोनेट कर रही। उसके आगे जयपुर की बिल्डिंग का 20 लाख का हॉल क्या होता है, 100% नहीं है, 10% भी नहीं है, 5% भी नहीं है। तो हमने दस्तावेज को चुम्बन थोड़े किया, रख दिया उधर पर। नारायण नारायण हरि नारायण। फिर मैं अपना विचार बता दूं समिति का कि मेरे मन में भी कई दिनों से ऐसा आ रहा है कि समिति के लोग भी बूढ़े होंगे और एक दिन मरेंगे भी जरूर, तो घर में ही मरेंगे, गृहस्थी में ही, और वहीं फिर बैठ गए। इससे तो एक ऐसा आश्रम बना है कि जो समिति के कार्यकर्ता हैं रिटायरमेंट लाइफ वहाँ के कभी थोड़ी थोड़ी गुजारे, ऐसा एक विशाल जगह में आश्रम बनाए, कुछ स्विमिंग पूल हो, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हो, कुछ कीर्तन का हो, कोई पैरामिट हो, ऐसा कुछ 2-5 करोड़ की संस्था बना ले ताकि सारे समिति वाले और बंदे जो हैं रिटायर लाइफ, हम भी तो रिटायर लाइफ गुजारने की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी तो गुजारेंगे। संसार में बहुत हो गया, प्रचार प्रसार बहुत हो गया, तो ऐसा विचार भी आ रहा है। फिर देखें कहाँ अन्न जल भूमि कौन सी जो हरी इच्छा होगी, ऐसा विचार चल रहा है अभी। तो बनाना चाहेंगे अगर तो फिर किसी चीज़ की कमी भी नहीं रहेगी, मैन पावर की ये वो कमी भी नहीं रहेगी, लेकिन जो विचार आया मीटिंग में तो विचार रखना है, तो मैंने अपना रख दिया, आपने भी रख दिया, हमने भी रख दिया। नारायण हरि नारायण।
जगने दो सुषुप्त शक्तियों को, जगने दो तुम्हारी प्राण कला को, चित्ती को, चेतना को। ये केवल मजा लेना नहीं है, परम मजे के द्वार खोलने की भी एक कला है, एक प्रयोग है। हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी, जब आशिक मस्त